नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 16 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक नुकसान। अरवल में वज्रपात की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। काल वैशाखी की सक्रियता के कारण आज भी प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का अलर्ट। अंबेडकर समग्र योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल इलाकों में 60,000 शिविर लगाकर 22 प्रकार की योजनाओं का देगी लाभ। और राज्य सरकार का निर्णय, गोताखोरों और नाविकों का होगा 5,00,000 रुपए तक का बीमा। अब समाचार विस्तार से। काल बैसाखी के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के 16 जिलों में आंधी और पानी से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इस दौरान शेखपुरा, सारण, बांका और कैमूर जिले में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि के कारण फसल को व्यापक क्षति हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 14.5 मिलीमीटर वर्षा वैशाली में रिकॉर्ड की गई। वहीं पटना में 6.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया सहित कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कई स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है।
अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक या दो स्थानों में मेघ गर्ज वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अरवल जिले के बंसी प्रखंड के शादीपुर गाँव में वज्रपात की चपेट में आने से एक दंपत्ति और उनकी बेटी की मौत हो गई। गोपालगंज के कोटवा गांव में भी वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,20,742 अतिरिक्त आवास आवंटित किया है। इन अतिरिक्त आवासों के आवंटन से प्रदेश में पीएम आवास योजना की वर्ष 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्रीय कृषि और किसान तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संबंध में जानकारी दी है। गौरतलब है कि योजना के लाभुकों की नई सूची बनाने को लेकर प्रदेश में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल तक चलेगा। राज्य के सभी प्रखंडों में 60,000 से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति टोलों में विशेष विकास शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से 22 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक प्रखंड की आधी पंचायतों के एक एक टोले में बुधवार को और शेष पंचायतों के हर टोले में शनिवार को शिविर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करेंगे। राजद सांसद मनोज झा ने बताया है कि इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे समेत कई बिंदुओं पर बातचीत होगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनका अब एनडीए से कोई नाता नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। श्री पारस ने कहा कि यदि उन्हें महागठबंधन में उचित सम्मान मिलेगा तो वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं।
महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। अभी तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कहीं ही पकड़ नहीं है। और 243 सीट पर हम अपना पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब समय आएगा जिस पार्टी के द्वारा हमारा उचित सम्मान मिलेगा हमारे दल को, उस गठबंधन के साथ हम जाएंगे।
मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने कहा है कि वर्षों से वार्षिक रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं सौंपने वाले राज्य में कार्यरत एनजीओ और अन्य सामाजिक संस्थानों का निबंधन रद्द होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मई तक सभी संस्थानों को अपना वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद भौतिक रूप से कोई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग ने कहा है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर अब चालान कटेगा। यह नियम राज्य के स्मार्ट सिटी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में जल्द ही लागू होगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों का एक दिन में एक बार चालान कटेगा। निर्गत ई चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग की ओर से एक दिन की अनुग्रह अवधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का ऑटोमेटिक चालान काटा जाता है। अब यह व्यवस्था विभिन्न शहरों में भी लागू की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि भारतीय संविधान समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है और इसने देश को सुदृढ़, स्थिर और एकजुट रखा है। न्यायमूर्ति गवई कल नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित प्रथम अंबेडकर स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान देश ने अनेक बाहरी दबाव और आंतरिक अस्थिरता का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद यह एकजुट और सुदृढ़ रहा है। बदलावों को समायोजित करने के लिए संविधान में समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना से दोपहर 3:10 पर प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन और 3:15 पर प्रसारित होने वाले उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। अब हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण प्रत्येक दिन दोपहर 2 से, जबकि उर्दू समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2:05 से किया जा रहा है। राज्य सरकार नाविकों और गोताखोरों को 5,00,000 रूपये तक का बीमा उपलब्ध कराएगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरी सहनी ने कहा है कि मल्लाह समुदाय के लोगों का 2,00,000 का जीवन बीमा कराया जाएगा। श्री सहनी ने निषाद राज गुहा जयंती पखवाड़ा के अवसर पर यह घोषणा करते हुए कहा कि नाव और नाविकों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 40-60% तक की सब्सिडी नावों की खरीद पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निषादराज गुहा जी की जयंती के अवसर पर आज पटना में जेपी गंगा पथ के दीघा घाट पर एक नाव रैली और गोताखोर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि यह आयोजन हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरव को सहेजने का प्रयास है। इससे मल्लाह समुदाय के अधिकारों, उनकी प्रतिभा और परंपरा को सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के प्रतीक और शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर का नाम गज सिंह रखा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरण ने बताया कि इन खेलों का आयोजन 4 से 15 मई तक पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होना है। इसके तहत वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स और सेपक टाकरा समेत 18 अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 7वां एडिशन है इसके पहले चेन्नई में हुआ था और देश का इतना राज्य में सातवां एडिशन मेजबानी करने का अवसर बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें ये मौका मिला है। नेशनल गेम्स के बाद हमारा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम खेल का यही है और 8,500 एथलीट्स पूरा देश से आके शामिल हो रहे हैं और 1,500 टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं।
इधर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग मशाल और जर्सी का अनावरण किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, विधायक और ओलंपियन श्रेयसी सिंह, एथलीट लवलीना बरगोहाइन, मीराबाई चानू, हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल और पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया समेत खेल जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं। इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल यात्रा आज से शुरू हो रही है। यह यात्रा 2 मई तक प्रदेश के सभी 38 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान लोगों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जागरूक किया जाएगा। मशाल यात्रा में प्रदेश के नामचीन खिलाड़ी और विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत नेपाल सीमा के निकट नेपाल के बीरगंज में कर्फ्यू समाप्त होने के बाद आवागमन सामान्य हो गया है। रक्सौल और बीरगंज स्थित दोनों देशों की सीमा पर खड़े मालवाहक वाहन और पर्यटकों की आवाजाही भी सुचारू हो गई है। दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में जुड़शीतल का पर्व आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग अपने पेड़ों को जल अर्पित करते हैं, इसके साथ ही एक दूसरे पर मिट्टी का लेप लगाकर धुरखेल खेलते हैं। अरवल जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 139 पर बेलसार ग्राम के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, समान पेंशन योजना वर्ष के अंत तक हो सकती है शुरू। अखबार लिखता है, योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले इसके लिए रोजगार की बाध्यता नहीं होगी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, बिना थर्ड पार्टी वाहन चलाया तो कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, SBI के लोन सस्ते, ब्याज दरों में 0.25% की कटौती। प्रभात खबर ने प्राथमिक शिक्षक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार में पहली बार 4 से 15 मई तक होगा आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 16 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक नुकसान। अरवल में वज्रपात की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। काल बैसाखी की सक्रियता के कारण आज भी प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का अलर्ट। अम्बेडकर समग्र योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में 60,000 शिविर लगाकर 22 प्रकार की योजनाओं का देगी लाभ। और राज्य सरकार का निर्णय, गोताखोरों और नाविकों का होगा 5,00,000 रूपए तक का बीमा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।